भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रारंभ की और सौभाग्य है कि कार्तिक का महीना जो अभी अभी प्रारंभ हुआ है और भगवान की ये लीला हमारे जो डिस्कशन के सीरीज हैं उससे योग खा रही है। तो हमने पिछले रविवार को और उससे पिछले रविवार को जो कुछ गोवर्धन लीला से सीखना प्रारंभ किया, संक्षिप्त रूप में एक रिकैप उसका लेना चाहेंगे। हमने ये प्रसिद्ध श्लोक लिया था, गोपियां जो कि भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं वो गोवर्धन का गुणगान कर रही हैं, हंताय मद्रिरपला हरिदास वर्य। तो वो सर्वश्रेष्ठ हैं परंतु गोवर्धन को वो सर्वश्रेष्ठ कह रही हैं। और भगवान ने जो इतनी प्रमुख लीला की इस कार्तिक के महीने में, तो उसके 8 कारण हमने देखे। देवराज इंद्र का अभिमान दूर करने हेतु गोवर्धन पर्वत की महिमा दर्शाने हेतु, गोवर्धन पूजा का उद्घाटन करने हेतु ब्रजवासियों की अटूट श्रद्धा दर्शाने हेतु, ब्रज के सभी निवासियों के साथ निरंतर 7 दिन 7 रात रसास्वादन करने हेतु, देवताओं की पूजा की तुलना में शुद्ध भक्ति की महिमा ये भगवान ने दर्शाई, कलयुग के ढोंगी भगवानों का पर्दाफाश किया, कलयुग के बद्ध जीवों को सबसे पावन तीर्थ ये हमें प्रदान कर भगवान ने दिया। फिर हमने देखा कि याज्ञिक ब्राह्मण और गोवर्धन लीला में क्या कनेक्शन भगवान ने किया। ये प्रसिद्ध श्लोक जहां भगवान वृक्षों का गुणगान कर रहे हैं, और हमने फिर प्रारंभ किया जो सबसे पहला कारण भगवान ने गोवर्धन लीला करने का, देवराज इंद्र का मान नीचे करना या भंग करना और उनके 4 अभिमान, गुण अभिमान, पद अभिमान, ऐश्वर्य और अनुयायी अभिमान, और 4 नम्र उदाहरण हमने देखे। और ये हमने एक स्लाइड दिखाई थी जहां हम ये मुद्दा कहना चाह रहे थे कि भगवान की मदद या सहायता तो हर क्षण हमें मिलती रहती है। समस्या है कि ये जो अहंकार का झोला लेकर हम लटके हुए हैं, जिसके वजह से भगवान की कृपा, भगवान की सहायता को हम नहीं पकड़ पा रहे। तो दोनों इस भौतिक संसार में हमारे सामने उपलब्ध किया जाता है, हमारे अनर्थ और भगवान की कृपा। जैसे यहां पर इस चित्र में आप देखो कि हमारे अनर्थ जिनको हम पकड़े हुए हैं और ऊपर से भगवान की कृपा। और कई बार जानते हुए कि हमारे अनर्थ हमको खाई में ढकेल रहे हैं, यहां नीचे चित्र में दिख नहीं रहा परंतु अंदाजा हमने लगा लिया होगा कि नीचे क्या है, खाई है। खाई, खाई जानते हैं आप लोग, डीप वैली खाई है। और जो सहारा, ये जो नाजुक सी टहनी दिख रही है, ये नाजुक सी टहनी जिसके सहारे हम लटके हुए हैं, ये हमारे जो भौतिक प्लांस, इस संसार में सुखी होने के हमारी योजनाएं, वो है नाजुक टहनी। तो वो टूट रही है और हमारे जो अनर्थ हैं जिनके वजह से और भारी हम होते जा रहे हैं, और उपाय सामने हैं, हमारे ऊपर है, परंतु फिर भी हम उसे देखा अनदेखा करना चाहते। ये नहीं कि दिख नहीं रहा, एक है कि दिख नहीं रहा और दूसरा है देखा अनदेखा कर देना। जैसे होता ना, कई बार आपने किसी से कर्ज लिया है, कर्ज लेने के बाद वो व्यक्ति अदृश्य हो जाता है हमारे लिए, सामने भी आ जाए तो पहचान में नहीं आता, अच्छा आप ही हैं। तो वैसे ही भगवान की कृपा, सभी जानते हैं भौतिक संसार में कि वही एकमात्र उपाय है, समाधान है, परंतु फिर भी हम देखा अनदेखा करना चाहते हैं। और यहां पर हम बात कर रहे हैं भौतिकतावादी लोगों की नहीं, यहां पर हम बात कर रहे हैं आध्यात्मवादियों की, यहां पर हम बात कर रहे हैं हम सब साधकों की, जिनको श्रील प्रभुपाद की कृपा से सब कुछ ज्ञान मिल चुका है। प्रभुपाद ने कुछ भी नहीं छिपाया, सब कुछ दिया प्रभुपाद ने। और हम जानते हैं कि इसका हम पालन करेंगे तो इसमें हमारा ही उद्धार है, न तो प्रभुपाद का इसमें कुछ फायदा होने वाला है और भगवान का तो बिल्कुल नहीं। भक्ति करकर हम भगवान पर एहसान नहीं कर रहे, अपने ऊपर एहसान कर रहे। जैसे ये प्रसिद्ध कथा है अहंकार के ऊपर, एक गांव में एक ब्राह्मण जो कि बहुत प्रसिद्ध था उस गांव में अपनी गायत्री जप के वजह से। अब देखिए, जो ब्राह्मण, उनको अपना संध्या वंदन करना होता है, तो जो संध्या वंदन गायत्री का जाप वो करते हैं उसका एक निर्धारित समय होता है। उसी समय यदि वो संध्या वंदन किया जाए दिन में 3 बार, तो उसका जो परिणाम है, उसका जो फल है, वो सबसे ज्यादा अपने असरदार तरीके से मिलता है। तो इस गांव में ये ब्राह्मण ये बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि बचपन से लेके जब से उसका उपनयन हुआ था और बड़े होने तक, उसकी वयस्क अवस्था तक, उसने एक बार भी अपना संध्या वंदन भंग नहीं किया था। तो उसका वो रिकॉर्ड कि इसने एक बार भी अपना गायत्री जाप निर्धारित समय पर भंग नहीं किया है, तो ये उसकी ख्याति थी पूरे गांव में। परंतु एक दिन ऐसा हुआ है ना, भौतिक संसार में चाहे कितनी भी ख्याति किसी की हो, कुछ समय बाद माया देवी परंतु शब्द लाती है उसके जीवन में, किंतु परंतु। तो एक दिन ऐसा हुआ कि संध्या का समय, शाम का समय और उसके गायत्री जाप करने का समय आ रहा था, उसे नींद लग गई। अब देखिए, जिंदगी में पहली बार उसे झपकी लग रही है। ये भी गौर करने योग्य है बात। हमारा कई बार उल्टा होता है, जिंदगी में कई बार पहली बार हम जागरूक अवस्था में जप करते हैं। तो यहां पर पहली दफा अपनी जिंदगी में ये अब झपकी और नींद में चला गया, तमोगुण में जा रहा था। तुरंत एक व्यक्ति वहां पर उपस्थित हुए, पता नहीं कहां से, अकेला ये व्यक्ति था, अकेला वो अपना संध्या वंदन किया करता था। अचानक अकस्मात एक व्यक्ति वहां पर उपस्थित हो गए और इनको उठाया, उठाकर याद दिलाया कि भाई आपका ये जो संध्या वंदन है वो चूकने वाला है, भंग होने वाला है। तो तुरंत वो उठे, उन्होंने आचमन किया और गायत्री जाप ठीक समय पर, जो अब तक उनका ट्रैक रिकॉर्ड था वो मेंटेन रखा और उनको एक चैन की सांस आई। तो उन्होंने जब अपना पूरा वो गायत्री जाप कर लिया, उसके पश्चात फिर उनको ये प्रश्न उठा कि कौन ये व्यक्ति था जिसने मेरी ऐसी सहायता की, ऐसी मेरी मदद की कि जहां पर मेरी जो प्रसिद्धि, मेरी ख्याति वो चुनौती पर थी। तो वो व्यक्ति वहीं खड़ा था, तो पूछा भी कौन है आप, आपको पहले तो कभी इस गांव में देखा नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा मैं मूर्तिमान कलयुग हूं। मूर्तिमान कलयुग? भाई मूर्तिमान कलयुग तो पथभ्रष्ट करने के लिए है लोगों को अध्यात्म के पथ से। तो आपने मुझे प्रेरित किया, मेरी सहायता की मेरे इस आध्यात्मिक क्रिया में, तो ये कैसे समझा जाए? तो मूर्तिमान कली ने कहा कि आपने ठीक कहा, मेरा कार्य है लोगों को, विशेष रूप से जो अध्यात्म में लगे हुए हैं उनको पथभ्रष्ट करना। ठीक कहा, और मैंने वही किया। कैसे? क्योंकि इतने सालों से आप जो ये गायत्री जाप ठीक समय पर जो कर रहे थे, उसके वजह से आपको जो ख्याति प्राप्त हुई थी, आपका जो अभिमान, आपका अभिमान इतना बढ़ चुका था उसके वजह से, और उस अभिमान के वजह से आपको आपके गायत्री जाप का कण मात्र भी श्रेय नहीं मिल रहा था। बिकॉज ऑफ योर प्राइड दैट आई हैव नेवर एवर इन माई एंटायर लाइफ deviated from my Gayatri chanting, because of that pride, the fame and the pride after that, you were losing all the credits of your chanting of Gayatri. इसलिए मैंने आपको क्यों उठाया, क्योंकि यदि आज आप सो जाते तो लोग आपकी खिल्ली उड़ाते, एहले ये भी गिर गया। बस इतना ही था इसके अंदर स्टैमिना। तो पूरा गांव आपकी खिल्ली उड़ाता, और जब पूरा गांव आपकी खिल्ली उड़ाता आपकी ख्याति नष्ट हो जाती, तो उस समय आपका ये अभिमान चूर चूर हो जाता, और अभिमान चूर चूर हो जाता तो आप नम्र बन जाते, और अगर नम्र बन जाते तो जितना गायत्री जाप आप उसके बाद करते उसका पूरा श्रेय आपको मिलता, आप उन्नति कर देते। इसलिए मैंने जो मुझे करना था वो किया। क्या किया? कि मैंने आपको आपके अभिमान के शिखर के ऊपर विराजित रखा। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी वो अपनी प्रार्थना में बहुत पावरफुल इस अभिमान के संदर्भ में एक उदाहरण देते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, ओ माय डियर गिरिराज, गोवर्धन लीला चल रही तो गिरिराज से प्रार्थना कर रहे हैं, माय डियर गिरिराज काइंडली प्रोटेक्ट मी फ्रॉम एवरीडे बेदिंग इन डोंकी यूरिन ऑफ फॉल्स प्राइड। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अहंकार की तुलना वो कर रहे हैं गधे के मूत्र से। हिंदी में थोड़ा ज्यादा ग्राफिक लगता है। और वो कह रहे हैं कि मैं जो रोज, हालांकि वो उनकी नम्रता है वो हमको बता रहे हैं। सोचिए रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे गोस्वामी वो ये प्रार्थना कर रहे हैं, तो तुलना कर रहे हैं कि ये जो मेरा अभिमान जिसमें रोज मैं नहाता हूं, रोज अभिमान में मैं घंटों घंटों नहाता हूं, कई बार तो 24 घंटे, तो मैं किससे नहा रहा हूं? एक गधे के मूत्र से नहा रहा हूं। अब देखिए हमारी अगर हम स्थिति देखें, विशेष रूप से अगर मैं अपनी स्थिति देखूं, तो अभिमान में हम जब नहाते हैं, हम भी अभिमान में रोज 24 घंटे नहा रहे हैं, उसी के शावर के अंदर है, परंतु हम उस शावर को कैसे देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि एकदम सुगंधित केवड़ा का पानी, गुलाब की पंखुड़ियों से मिश्रित सुगंधित कर्पूर युक्त केवड़ा का पानी है, उससे मैं नहा रहा हूं। ये मेरा दृष्टिकोण। और जब ये हम सुनते हैं, अरे बाप रे, ये तो गधे का मूत्र है, गोमूत्र नहीं। तो हमारे आचार्य क्यों ऐसे स्ट्रांग उदाहरण दिए हैं कि जब भी फिर हम एनकाउंटर करें हमारे फॉल्स प्राइड से, तो ये सारे उदाहरण याद आने चाहिए। हम आपको एक और उदाहरण सुनाना चाहें। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने अपने हाथों से एक भजन लिखा, उनके द्वारा रचित, दुष्टमान तुमी किशर वैष्णव प्रतिष्ठार तरे निर्जने रघरे तव हरिनाम केवल कैतव। वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस प्रकार के वैष्णव हो तुम हे दुष्ट मन। वो कह रहे हैं कि हमारी वैष्णवता हमारे मन के द्वारा समझ में आती है, ये पहनावे के द्वारा नहीं। केवल लंबा तिलक लगा लेना, मोटी कंठी माला पहन लेना, धोती कुर्ता, तो वो कह रहे हैं कि ये वैष्णवता नहीं है। दुष्ट मन तुम्ही किशेर वैष्णव, तो कह रहे हैं कि अंदर जाकर सीधा मन, तुम्हारा जो मन है वो है पहचान तुम्हारे वैष्णवता की। प्रतिष्ठार तरे निर्जने रघरे, और प्रतिष्ठा के पीछे तुम जो निर्जन भजन कर रहे हो, दूसरों को दिखा रहे हो कि देखो मैं कितना पहुंचा हुआ वैष्णव हूं, तव हरिनाम केवल कैतव। वो जो हरिनाम है, वो जो जोर जोर से हरे कृष्णा महामंत्र का तुम जाप कर रहे हो दूसरों को सुना सुना के, भक्ति सिद्धांत कहते हैं केवल कैतव, ढोंग स्वांग है, पाखंड है, दिखावा है और कुछ नहीं। तो ये तो इस भजन की शुरुआत है, बहुत लंबा चौड़ा भजन है ये। तो देखिए, वो बोलते हैं ना, फर्स्ट बॉल में बोल्ड, क्लीन बोल्ड किया, वैसे है ये भजन, ऐसा है। फिर आगे सरस्वती ठाकुर इस भजन में कहते हैं, जड़ेर प्रतिष्ठा शुकरेर विष्ठा जानो ना किता मायार वैभव। वो कहते हैं कि ये जो जड़ प्रतिष्ठा, सबसे पहले तो प्रतिष्ठा, और वो भी जड़ प्रतिष्ठा, कि ये जड़ प्रतिष्ठा शुकरेर विष्ठा, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने गधे का मूत्र बताया अभिमान को। यहां सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि ये जो जड़ प्रतिष्ठा है, ये सुअर की विष्ठा के समान है। अब देखिए, संस्कृत में विष्ठा ये बहुत कई बार कानों को इतना कठोर नहीं लगता, समझ में नहीं आता लोगों को, विष्ठा नाश्ता विष्ठा राइमिंग लगता है तो सरस्वती ठाकुर अगर हम एकदम देहाती भाषा में बोलें, सुअर की टट्टी, फिर समझ में आता है, अरे बाप रे, राम 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 राम, सुबह सुबह क्या ये प्रभु जी बोल रहे हैं, सुबह सुबह ही बोलना चाहिए, वो काम सुबह सुबह ही होता है। तो राधानाथ महाराज इसके ऊपर एक बार व्याख्या करते हुए बोल रहे थे कि अब देखिए, सुअर क्या खाता है, सुअर सबसे पहले उसका नाश्ता खाना आहार सब कुछ वही है, विष्ठा ही खाता है वो, और वो फिर जो खुद विष्ठा देता है, तो विष्ठा रिसाइकल्ड इनटू अनदर विष्ठा, वो है जड़ेर प्रतिष्ठा। सरस्वती ठाकुर के अनुसार सुअर की विष्ठा का अर्थ है रिसाइकल्ड स्टूल। अब देखो, हमें क्या लगता है, जैसे हम वो उदाहरण लिए कि गधे का मूत्र, हमें जब हम नहाते हैं अभिमान में तो हमको लगता है कि सुगंधित ये कर्पूर युक्त केवड़ा का जल है, वैसे ही ये सुअर की विष्ठा हम जब अभिमान के संपर्क में आते हैं हमारे, तो हमको तो एकदम रुचिकर और हमारे जिह्वा में लाल देने वाला ऐसा कोई पदार्थ व्यंजन लगता है जो हमें अति प्रिय हो और जिसको हम चाव से चाट चाट कर खाते हैं। तो यहां पर हमने इसकी चर्चा की थी, फिर हमने जय श्री श्री राधा मदन गोपाल ललिता विशाखा देवी की, कि एक लीडर और एक मैनेजर, भगवान श्री कृष्ण और इंद्र, इनमें दोनों में अंतर किया है, इसकी चर्चा की, और तरतम्य न्याय जो कि एक बहुत प्रसिद्ध न्याय है संस्कृत भाषा में, जिसे हमने समझा कि ये जो अभिमान है हमारा, ये कैसे हमें बद से बदतर बनाता है, बद से बदतर। तो तरतम्य न्याय से हमने शास्त्रों में वर्णित तीन प्रकार या तीन लेवल्स अभिमान के, मत्त प्रमत्त उन्मत्त, और फिर हमने ये तीन उदाहरण लिए थे ये तीन लेवल्स हमारे अभिमान के, नलकुंवर मणिग्रीव, कर्ण और इंद्र। और फिर तरतम्य न्याय से यदि हम देखें तो एक एक कर हमारे जीवन में, जैसे देवराज इंद्र के जीवन में, ये सारे अभिमान माया देवी प्रस्तुत करती रहती। स्पेशली जब हम भक्ति में लगते हैं तो गुण, हमें देवताओं के गुण प्राप्त होते हैं, फिर गुणों को प्राप्त करने के पश्चात हमें पद चाहिए, फिर ऐश्वर्य चाहिए, फिर अनुयायी चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए। तो हमने ये लिया था कि देवराज इंद्र, उनके मेंटालिटी क्या है कि स्पेशली ये गोवर्धन लीला में कंपेयर एंड कॉम्पीट, उन्होंने अपने आप को कंपेयर किया गोवर्धन से, या भगवान ने करवाया भी, और केवल उतना ही नहीं था बल्कि फिर वो कॉम्पीट करने लगे। ये मुझे एक अच्छा इमेज मिला कंपैरिजन और कंपटीशन में। यहां पर आप देखिए कि ये तीन केले, बीच वाला पका हुआ मुस्कुरा रहा है, और बाकी जो अपक्व या पके हुए नहीं है, जो कच्चे हैं, वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि ये कैसे पक गया, हम क्यों नहीं पके। तो अक्सर जब हम कंपैरिजन मोड में जाते हैं तो हमारा जो कंपैरिजन मोड है वो अक्सर किसके लिए होता है, उसी व्यक्ति के लिए होता है जैसे ये बगल वाला केला। अब ये केला कभी अमरूद को देखकर वो कॉम्पीट नहीं करेगा, अमरूद कैसे पक गया, नहीं, वो अपनी जाति के लोग को देखकर ही कॉम्पीट करेगा। केला केले को देखकर कॉम्पीट करेगा, अमरूद को देखकर या आम को देखकर नहीं। तो वैसे ही हम लोग कंपेयर करते हैं, हम लोग कॉम्पीट करते हैं। अब जैसे मान लो कोई पक्षी है, बहुत सुंदर दिखने वाला कोई प्राणी है, तो हम उसकी सुंदरता को देखकर अपने आप को कंपेयर नहीं करते, अरे मैं वो परमहंस की तरह या हंस की तरह मैं क्यों सुंदर नहीं हूं। नहीं। हम लोग अक्सर, अब जैसे भारतीय जो हैं वो विदेशियों को देख के भी अपनी सुंदरता कंपेयर नहीं करेंगे, वो लोग भारतीयों में अपनी सुंदरता कंपेयर करेंगे, फिर महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियंस, वहां पर, या गुजरात में जाओ वहां पर वो, या जहां पर भी पंजाब में जाओ, राजस्थान में जाओ, जहां पर भी जाओ वो लोग वहां से कंपेयर करेंगे, और वहां से फिर कंपटीशन चालू होता। हमको एक हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक स्टोरी सुनाई गई थी बहुत साल पहले कि दो मित्र वो शिकार के लिए जाते हैं जंगल में, तो शिकार करते हुए उनका सामना एक शेर से होता है। अब उनके पास सारे अस्त्र शस्त्र थे, परंतु शेर को देखने के बाद सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तो शेर को उन्होंने, दोनों ने देखा, अब इतना ही काफी नहीं था, शेर ने इन दोनों को देख लिया। अब देखिए ये अलग स्टोरी हो जाती है, आपने शेर को देखा और शेर ने आपको देखा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो शेर ने जैसे इन दोनों को देखा गुर्राने लगा, और वो अब तैयारी कर रहा है प्रहार करने की। तो इसमें से एक मित्र, उसने अपना झोला निकाला, बैकपैक, और अपने जो हंटिंग बूट्स है वो निकालकर रनिंग शूज पहनने लगा। उसने हंटिंग बूट्स पहने हुए थे, तो हंटिंग बूट्स निकालने लगा, जैसे शेर ने अभी देख लिया इन दोनों को, तो रनिंग शूज अपने पहनने लगा वो। तो दूसरा मित्र इसको देख रहा है कि ये क्या कर रहा है, तो पूछता है तो तू क्या ये शेर को मात कर देगा भागने में ये खाली जूते पहनकर, तेरे को क्या लगता है शेर नहीं पकड़ पाएगा तेरे, डू यू थिंक यू कैन आउटरन दिस टाइगर। तो मित्र कहते हैं नो बट आई कैन आउटरन यू, मैं ये जूते शेर को परास्त करने के लिए नहीं पहन रहा हूं तुम्हें, क्योंकि शेर को हम दोनों में से एक ही चाहिए। द टाइगर wants ओनली वन amongst us, सो आई एम wearing दीज रनिंग शूज टू outrun यू एंड that's how आई विल बी saved। ये है comparison एंड competition। और व्रज भाव ये क्या है, कॉम्प्लीमेंटिंग एंड कोऑपरेटिंग। कॉम्प्लीमेंटिंग प्लीज इज कृष्णा, कोऑपरेशन रिलीज इज कृष्णाज मर्सी। तो आज का श्लोक हम लेंगे, उससे पहले ये जो हम रिकैप लिए पिछले दो हफ्तों का, तो एक बहुत सुंदर एसएमएस मुझे आया था हाल ही में, तो मैंने सोचा कि उससे शुरुआत करते हैं। थॉट फॉर द डे, ध्यान से पढ़िए। मैच्योरिटी इज टू लिव इन पीस विद पीपल हुम वी नो दैट वी कैन नॉट चेंज। और ये होने वाला है हमारी जिंदगी में, चाहे वो हमारे निकट के परिवार वाले हों, हमारे मित्र हों, हमारे गुरु बंधु हों, गॉड ब्रदर गॉड सिस्टर कोई भी हो, ये होने वाला है। हम उनको बदलने की कोशिश करना चाहते हैं, कैसे, मेरी तरह बनो या मुझसे थोड़ा कम, वो ठीक है, मेरी तरह नहीं मुझसे थोड़ा कम। जैसे भगवान ने देवकी वसुदेव को कहा ना, वो कहते थे कि आपकी जैसा पुत्र हमें चाहिए, तो भगवान ने कहा नहीं मेरे जैसा तो कोई है नहीं, तो मुझे ही बनना पड़ेगा आपका पुत्र। तो कई बार हम भी उसी मोड में रहते हैं कि मेरे जैसा तो तुम बन नहीं सकते, तो एक कदम नीचे रहो मुझसे, नजर नीची हर समय। तो मैच्योरिटी, यहां पर मैच्योरिटी बताया गया है, जो कि बहुत आजकल रेयर है, रेयर। ये मैच्योरिटी जो क्वालिटी है, इट इज गेटिंग एक्सटिंक्ट इवन अमंगस्ट डिवोटीज। मैच्योरिटी, अब देखिए, टू लिव इन पीस, यहां पर ये क्या कहा गया है, टू लिव इन पीस विथ पीपल हुम वी नो वी कैनॉट चेंज। तो मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, जब मैं राधानाथ महाराज का निजी सेवक था, तो हर वर्ष जीबीसी मीटिंग के लिए महाराज मायापुर जाते हैं, तो मैं सर्वेंट था, तो मैं भी महाराज के साथ मायापुर गया, हम दोनों केवल। तो हम लोग दोनों अब कलकत्ता एयरपोर्ट से टैक्सी में बैठे हैं मायापुर जाने के लिए। तो महाराज ने, जैसे ही हम मायापुर अब टैक्सी पहुंची, श्री धाम मायापुर चंद्रोदय मंदिर, तो महाराज ने मुझे कहा, सो शिक्षाष्टकम प्रभु, महाराज कहते हैं, सो नाउ वी विल बी टुगेदर फॉर 15 डेज। तो मुझे बहुत, 15 दिन अपने गुरु महाराज के साथ, मैं और मेरे गुरु महाराज अकेले, तो मुझे है ना थोड़ा सीना फूल रहा था। इट वॉज गेटिंग इन्फ्लेटेड। तो महाराज कहे वापस, सो शिक्षाष्टकम प्रभु विल बी टुगेदर 15 डेज इन मायापुर नाउ। So you'll have to tolerate me. Just like I'll tolerate you. महाराज ने क्या कहा, पहले जब महाराज बोले कि जस्ट यू विल हैव टू टॉलरेट मी, तो मुझे लगा महाराज क्या बोल रहे हैं आप, विष्णु विष्णु ऐसे कैसे बोल रहे हैं। फिर जब वो कॉमा था, उसके बाद में नेक्स्ट लाइन, यू विल हैव टू टॉलरेट मी जस्ट लाइक आई विल टॉलरेट यू नाउ। अरे कृष्णा, फिर समझ में आया। तो हमारी भी, हम भक्तों के साथ कई बार हमको अगर शांति से रहना है तो ये प्रिंसिपल हर समय मुझे याद आता है। इफ यू हैव टू लिव इन पीस विथ योर फैमिली मेंबर्स एंड इवन गॉड ब्रदर्स एंड गॉड सिस्टर्स, मेनी टाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल। इफ यू थिंक यू आर टॉलरेटिंग देम, प्लीज नो दैट दे आर ऑल्सो टॉलरेटिंग यू। हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के श्यामानंद प्रभु, जब उनको प्रेसिडेंशियल बोर्ड में नियुक्त किया गया कि ही विल बी वन ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफ राधा गोपीनाथ टेम्पल, तो उनको ये लग रहा था कि बहुत बड़ा कोई पद रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो गए महाराज के पास ब्लेसिंग्स लेने के लिए। तो महाराज के पास जाते हैं, महाराज को कहते हैं, महाराज दे वॉन्ट मी टू बिकम one of the temple presidents, but so any instructions, blessings, instructions? To Maharaj ne kaha, yes Shyamanand Prabhu, now you will know how difficult it is to manage people like you. तो कई बार हमको क्या लगता है कि मैं कितना सहन कर रहा हूं इस व्यक्ति को, दिख रहा है कि नहीं लोगों को, इसको दिख रहा है कि नहीं, कितना मैं, कितने साल हो गए सहन कर रहा हूं, करे जा रहा हूं, फिर भी लोग बोलते हैं त्रिणादपि सुनिचे न तरोरपि, करते रहो। सो मच आई एम टॉलरेटिंग दिस पर्सन एंड सो मेनी पर्सन लाइक हिम, हिज एंटायर क्लब संप्रदाय। So kindly know that there are many who are tolerating me also. But they are so gentlemen that politely they keep tolerating. जैसे वो हमने तीसरे स्कंद का वो एक उदाहरण एक बार अपने क्लास में सुनाया था कि मधुमक्खी का छत्ता, दूर से देखो कि कैसे सारी मधुमक्खियां एकजुट होकर वो शहद को इकट्ठा कर वहां पर रख रही हैं, है ना, कितना क्लोज एसोसिएशन दिखता है मधुमक्खियों का वो छत्ते के अंदर। समझ में नहीं आता कि छत्ता कहाँ है, सब मधुमक्खियां ही दिखती है। तो तीसरे स्कंद में उदाहरण है कि जैसे मधुमक्खियां एकजुट होकर दिख रही हैं, परंतु वो हर क्षण एक मधुमक्खी दूसरे को डंक मार रही है। एवरी मोमेंट दोज बीज आर स्टिंगिंग ईच अदर, येट दे टॉलरेट। अब हमको अनुभव है मधुमक्खी का डंक बहुत दुखदायी होता है, yet they tolerate। तो ये उदाहरण दिया गया है, sense gratifiers are like that, they come together to form a society, a club, a family, whatever, and they keep stinging each other through their words, through their behavior, they keep stinging each other, but they know that I am getting the honey of sense gratification, as it is said that a wife looks cute when she is mute. Wife looks cute when she is mute. And husband looks like honey when he gives money. तो अब ये जो उदाहरण है तीसरे स्कंद का, जहां पर मधुमक्खियां एक दूसरे को डंक मार रही हैं, अगर हम हमारे वैष्णव कम्युनिटी में, डिवोटी कम्युनिटी में भी ये उदाहरण देखें, तो हमको एक पॉजिटिव लेसन या इंस्पिरेशन लेकर रहना चाहिए डिवोटी कम्युनिटी में, कि अगर कोई एक भौतिक पदार्थ शहद के लिए इतना डंक सहन कर सकता है कोई जीव, तो क्यों नहीं हम वैष्णव, चाहे हमें कितने भी वैष्णव मधुमक्खियों की तरह डंक मारते रहे रोज, और मारेंगे, मार रहे हैं, मारे हैं, मार रहे हैं, मारते रहेंगे। वैष्णव के बीच में हम जब रह रहे हैं, क्योंकि हम भी वही कर रहे हैं, so we'll have our own fellow god brothers and god sisters stinging us by their behavior, by their words, vak baan, vyavhar ka baan, alag alag prakar ke baan chhodte rahenge, aur tunir bhara hua hai baanon se, abhi tak to brahmastra chhoda nahi hai। to jab hum भक्तों के समुदाय में, हमको ये उदाहरण से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर हम एक साथ एकजुट होकर चाहे कोई कितना भी डंक मारते रहे, यदि कृष्ण प्रेम प्राप्त हो रहा है हमें, कृष्ण प्रेम की तुलना अगर हम उस शहद से करें, इफ वी कंपेयर कृष्ण प्रेम टू दैट हनी, वाई ऑल दीज बीज इन स्पाइट ऑफ बींग स्टंग दे आर स्टिल स्टिकिंग टूगेदर बिकॉज ऑफ द हनी। सो वॉट इज दैट वन थिंग विच शुड कीप अस टूगेदर इन स्पाइट ऑफ अवर स्टिंगिंग? कृष्ण प्रेम। कि ये जो मधुमक्खी है, मेरे बगल वाला लॉकर जिसका है, पिछले बुधवार को हम ड्रेसिंग करते समय राधानाथ महाराज का एक प्रवचन सुन रहे थे, तो महाराज यही उदाहरण दे रहे थे कि पहले महाराज ने गृहस्थों का उदाहरण दिया, हाउ देयर इज यू नो सो मच ऑफ कॉम्पिटिशन अमंगस्ट गृहस्थस, कि वो हफ्ते में 3 बार मंगल आरती है, मैं 4 बार आके दिखाऊंगा। उसने अपने बच्चे का नाम कृष्णदास, गौरांग, माधव ये सब रखा है, तो मैं भी वैसे ही रखूंगा। तो महाराज वो सब बता रहे थे कि कैसे कंपैरिजन होता है, फिर कंपटीशन होता है। फिर महाराज ब्रह्मचारियों का उदाहरण दिए, so now let's take the brahmacharis, so the brahmacharis, they are living together in one brahmachari ashram, lockers are next to each other, and then 2 brahmacharis, their lockers are next to each other, they are not in talking terms, लॉकर है पास पास में लेकिन हृदय है कोसों दूर। तो महाराज कह रहे थे, सो यू विल फाइंड 2 ब्रह्मचारी स्टेइंग सो क्लोज, हैविंग कोल्ड वॉर्स गोइंग ऑन, फ्रीजिंग कोल्ड वॉर्स गोइंग ऑन। और फिर महाराज ने कहा, एंड देन एवरी डे आफ्टर द मंगल आरती व्हेन यू से वांछा कल्प, so you are saying vancha kalpa, but in your mind you are saying panch kalpa. aur fir maharaj ne aage kaha, I'll punch you till the end of this kalpa. lekin bahar se vancha kalpa। तो जैसे तो यहां पर ये बताया गया है कि कैसे हमको सबसे पहले इस भावना में जाना चाहिए कि कैसे दूसरे मुझे टॉलरेट कर पा रहे हैं, ये आश्चर्य होना चाहिए. हाउ अदर्स आर टॉलरेटिंग मी. मैं जब हाल ही में 40 गांव गया था, तो 40 गांव वहां पर ने क्या था, रथ यात्रा के लिए. तो वहां पर मैंने देखा बहुत से सुअर हैं. तो मैं जब जा रहा था रथ यात्रा पंडाल, तो वहां पर मैंने देखा रास्ते में एक सुअर एकदम वो अभी वो नाले से बाहर नहा धो के निकला. बिना टॉवल के, शरीर भी नहीं पहुंचा उसने, से नहा धो के गटर से निकला है वो, काला पूरा वो गटर का पानी उसमें से, और एकदम ऐसे एक्सटेसी में बाहर आ रहा है कि तरोताजा होके बाहर आया हूं मैं, ऐसे नाले में से बाहर आया. मेरे को देख के मैं वो गाड़ी वाले को बोल रहा थोड़ा और दूर से, भाई झटक देगा तो पता नहीं सारा महाप्रसाद इधर आ जाएगा. तो मैं सोच रहा था कि भगवान देखो कितने टॉलरेंट हैं कि परमात्मा के रूप में उस सुअर के हृदय में भी विराजित है जो अभी भी गटर से बाहर आया. भगवान भी अब उसके शरीर के अंदर है, तो वो अपने आत्मा के साथ अपने काया के साथ परमात्मा को भी तो उस गटर में ले जा रहा है. तो उस सुअर को देख के मुझे लगा कि भगवान देखो कितने सहनशील हैं, कितना टॉलरेट कर रहे हैं कि साला तू कोई भी योनि में जा, मैं तेरे साथ ही जाऊंगा. चाहे तू सुअर बन, चाहे तू छिपकली बन, चाहे तू कॉकरोच बन, कुछ भी बन, भगवान साथ साथ जा रहे हैं, साथ साथ जा रहे हैं. तू चाहे विष्ठा खा, चाहे कुछ भी खा, मैं तेरी प्रतीक्षा करूंगा तेरे बगल में. देखिए भगवान की कृपा. द लॉर्ड इज विलिंग टू अकंपनी अस इन एवरी डैम स्पीशीज राइट नेक्स्ट टू अस वेटिंग व्हेन दिस सोल विल टर्न टुवर्ड्स मी. ऐसा नहीं कि परमात्मा ने सोचा कि अरे भाई ये बाकी की जो योनियां हैं वो तो उनका तो कोई चांस ही नहीं है अध्यात्म में आने का, तो मैं डायरेक्टली जब ये मनुष्य बनेगा तब मैं एंट्री करूंगा. हाँ, जब ये अपने एवोल्यूशनरी साइकिल में मनुष्य बनेगा तब मैं जाकर मेरा जो परमात्मा का सीट है वो ऑक्यूपाई करूंगा. तब तक बाकी योनियों में परमात्मा का सीट खाली है नहीं. एवरी सिंगल स्पीशी द लॉर्ड इज अकंपनिंग अस and is being witness to our nefarious sinful activities. कि उन भगवान को हम छोड़कर आए, दगा देकर आए, उनको धोखा देकर आए, फिर भी भगवान हमारे पीछे पीछे हमारी मदद करने के लिए, चाहे हम कोई भी योनि में जाते रहें, भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ रहे. और फिर भी यहां आने के बाद हमको वो शर्म भी नहीं आती कि हम जिनको छोड़कर आए हैं वो हमें छोड़ नहीं रहे, और हम यहां पर पूरे प्रयास में लगे हुए हैं कि कैसे हम डिस्टेंस और ज्यादा करें हमारे परमात्मा से, हमारे कर्मों से, हमारे वाक्यों से, हमारे उदाहरण से, और दूर हम अपने आप को करना चाहते. देखिए नास्तिक जो हैं, भगवान उनके हृदय में भी गए और वहां पर जाकर उनके हृदय में भगवान वो जो गाली गलौच कर रहे हैं उसी भगवान को जो उनके हृदय में बैठे हुए हैं भगवान सहन कर रहे हैं. तो मैं वो सोच रहा था उस सुअर को देखकर, हाउ मच कृष्णा इज टॉलरेटिंग अस. अभी कुछ दिन पहले, दो दिन पहले हम ब्रह्मचारियों के साथ दामोदर लीला डिस्कस कर रहे थे। तो दामोदर लीला डिस्कस करते समय जो सबसे पहले दो श्लोक हैं दामोदर लीला के, जिसके अंदर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एकदा गृहदाशीषु, कि एक दिन यशोदा नंद गेहिनी, यशोदा मई दिवाली का दिन जब वो बाकी जो उनकी दासियां थी उनको छुट्टी देकर स्वयं निर्ममन थे दही, स्वयं वो मथ रही थी दही को। और फिर सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर श्लोक में वो बखान कर रहे हैं यशोदा मई के गुणगान कर रहे हैं, उनका उनकी गुणों का बखान कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यानी यानी हि गीतानी तद बाल चरितानी च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। तो यहां पर वो कहते हैं कि यशोदा मई दही का मंथन करते समय तद बाल चरितानी च गीतानी गायंती, भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्र का कीर्तन कर रहे थे, कर रही थी वो। और उस कीर्तन ने सोए हुए भगवान को उठाया। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि माता यशोदा उन्होंने अपनी भक्ति से भगवान की दिनचर्या का स्केड्यूल चेंज किया। जी गोस्वामी कहते हैं कि जनरली भगवान लेट उठते थे, बहुत आराम से लेट उठते थे, परंतु दिवाली के दिन जब माता यशोदा उस प्रकार का कीर्तन कर रही थी सेवा करते समय, तो माता यशोदा के उस शुद्ध कीर्तन ने भगवान के स्केड्यूल को चेंज किया। तो हमारे कृष्णधन प्रभु अपना रियलाइजेशन कह रहे थे, वो बोल रहे थे, अच्छा पॉइंट उन्होंने कहा, क्यों भगवान ने अपना स्केड्यूल चेंज किया, जल्दी उठ गए। अब देखो किसी को जल्दी उठाना बहुत बड़ा स्केड्यूल चेंज करना होता है। तो प्रभु जी कह रहे थे क्योंकि माता यशोदा ने अपना स्केड्यूल चेंज किया कि दासियों को दूर कर खुद मैं करना चाहती हूं। तो भगवान जानते थे कि माता यशोदा ने अपना स्केड्यूल चेंज किया है तो मैं भी अपना स्केड्यूल चेंज करूंगा। थैंक यू। तो हम इस पर चर्चा कर रहे थे, तो मैं कह रहा था कि अब देखो भगवान को माता यशोदा के लिए उठकर जाना कोई आवश्यक नहीं था। भगवान कौन है? आत्माराम है। तो हम उदाहरण दे रहे थे कि जैसे मान लो कि किसी के सामने फीस्ट की प्लेट पड़ी हुई है और उस फीस्ट की प्लेट में सब कुछ उसके जो चहीते आइटम्स हैं, रबड़ी, खीर, पूरी, पुलाव, पनीर, समोसा, सब कुछ पूरा भरा हुआ है, और फिर जो प्रसाद सर्विंग कर रहा है वो एक बकेट लेके सामने से गुजरता है और उस बकेट में है बिना छोंक मारी हुई भगर की खिचड़ी। न तो उसमें कोई छोंक है ना नमक है ऐसे लेके, तो कितना आपकी प्लेट भरा हुआ है तो आप कितना उसके प्रति आकर्षित रहोगे? आप ऐसे अरे ये डाला नहीं तुमने, वो अगर डालने की भी कोशिश, नहीं 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 इधर मेरे को नीचे, क्यों? क्योंकि अपना प्लेट भरा हुआ है और ऐसे आइटम से भरा हुआ है कि हमको जरूरत ही नहीं है। अरे क्या वो बिना छौंक के भगर की खिचड़ी। तो तो भगवान आत्माराम, भगवान आत्माराम का अर्थ है कि भगवान का प्लेट पूरा फीस्ट से भरा हुआ है, और हमारा चैंटिंग कैसे है? भगर की खिचड़ी है, इसलिए कभी आते ही नहीं भगवान। और पूरा 6:45 से 7:45 हम भगर की खिचड़ी का बकेट घुमाते रहते हैं। तो ये हमारा चैंटिंग है, परंतु माता यशोदा का चैंटिंग, यानी यानी ही गीता नी तद बाल चरिता नी च, माता यशोदा की जो चैंटिंग वो ऐसी चैंटिंग की भगवान का फीस्ट का प्लेट भरा हुआ है, फिर भी भगवान कह रहे हैं कि मुझे उस बकेट से चाहिए। माता यशोदा की बकेट से चाहिए, इसको कहते हैं भक्ति का आकर्षण। कि जो इसलिए भक्ति, अच्छा एक अनाउंसमेंट हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि 500 रुपए डोनेशन बॉक्स में डालना है, जिसका भी सेल फोन बज रहा है या बजेगा या बजा है। इधर है डोनेशन बॉक्स, इधर है।
हरे कृष्णा, जिसका भी मोबाइल बचा है तो लेक्चर के बाद वो मेरे पास आपका नाम और नंबर दे सकते हैं, और अभी 500 रुपया जेब में नहीं है तो हम आपको फोन करके अपने भक्तों को घर पे भेज के 500 रुपया जमा कर देंगे।
मेरे ख्याल से जो हम ये पॉइंट बोल रहे हैं तो उस पॉइंट के संदर्भ में भी ये मोबाइल कई लोग बजाते होंगे कि जस्ट लाइक आई एम टॉलरेटिंग योर स्पीकिंग, यू टॉलरेट माय रिंगटोन। जय श्री श्री राधा मदन गोपाल ललिता विशाखा देवी की। तो यशोदा माई की चैंटिंग कि भगवान आत्माराम को आकर्षित किया, उनको उठाकर भगवान रेंगते हुए गए, माता यशोदा का वो मंथन रुकवाया और माता यशोदा को कहा कि मुझे आपका दूध पीना है। और जीव गोस्वामी कहते हैं कि वो जो माता यशोदा चैंटिंग कर रही थी अपने हृदय से, तो वो हृदय, वो हृदय का कृष्ण प्रेम भगवान माता यशोदा के दूध के रूप में आस्वादन करना चाहते थे। तो भगवान केवल दूध के भूखे नहीं थे, उस दूध के रूप में माता यशोदा के हृदय के शुद्ध कृष्ण प्रेम को पीना चाहते थे। तो ये स्टैंडर्ड है, ये जो दामोदर महीना चालू हुआ है, हम लोग जो एकदम अलग अलग मेलोडीज में दामोदर अष्टकम गाते हैं और स्टाइल में हम लोग लैम्प घुमा रहे हैं, तो उसके पीछे समझना चाहिए कि स्टैंडर्ड क्या भगवान ने सेट किया है। स्टैंडर्ड सेट किया है माता यशोदा के शुद्ध कृष्ण प्रेम का। तो यहां पर फिर से ये कोट पर आए, मैच्योरिटी इज टू लिव इन पीस विद पीपल हुम वी नो दैट वी कैनॉट चेंज। अब देखिए, हम अगर हमारे शरीर को लें तो हमारे शरीर में हम जो हमारे शरीर की त्रुटियां हैं उसको कैसे टॉलरेट करते हैं, है ना? हाउ वी टॉलरेट अवर ओन फिजिकल डेफिशिएंसीज। हाँ, शुरुआत में थोड़ा बुरा लगता है लेकिन फिर हम उसी में अपनी सुंदरता देखना शुरू कर देते हैं, है ना? हम सब अपने आप को किसी ना किसी रूप से सुंदर तो मानते ही हैं, चाहे दूसरे ना मानते हो, हम तो किसी ना किसी रूप से अपने आप को सुंदर मानते ही हैं, चाहे कितनी भी खामियां हो इस शरीर के अंदर, लेकिन फिर भी है, स्माइल मेरा कोई बीट नहीं कर सकता। मोटा होऊंगा लेकिन फिर भी है, लोग पसंद करते हैं मुझे। तो चाहे कितनी भी खामियां हो, हम धीरे धीरे उसको टॉलरेट कर उसमें कुछ ना कुछ अच्छा देखकर तसल्ली दे देते अपने आप को। जैसे सर से धीरे धीरे बाल जब झड़ने लगते हैं तो शुरुआत में बुरा लगता है, अरे बाप रे एक एक कर बाल झड़ रहे हैं, गंजा हो रहा हूं। फिर उसके बाद में कुछ समय बाद उसी में हम थोड़ा, हाँ थोड़ा ये भी अच्छा ही दिख रहा है। एक महिला, उसके केवल 3 बाल रह गए थे सर पे, ओनली 3 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। तो उसने सोचा, अभी पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में ये कि हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड, तो 3 बाल हैं केवल सर पर। तो उन्होंने सोचा क्या क्या करूं, इसकी चोटी बनाऊं, चोटी के लिए आपको चाहिए ना, वेणी वेणी बनाते कैसे, तो क्या चोटी बनाऊं। तो चोटी बनाते बनाते एक बाल झड़ गया, तो फिर दूसरे दिन सोचा अच्छा ठीक है, अब तो मांग निकाल सकती हूं बीच में से। तो मांग निकालते समय वो एक जो 2 में से एक चला गया, वो एक झड़ गया, अब एक ही बाकी रहेगा। तो फिर उन्होंने प्रश्न पूछा कि आज शैम्पू करूं या ऐसे ही छोड़ूं इसको। तो फिर शैम्पू किया तो फिर वो भी चला गया। फिर बाद में उसने सोचा चलो अभी तो खर्चा बचेगा। तो ये है कि हमारा हाल ऐसा है कि चाहे हमारे शरीर में कितनी भी बड़ी बड़ी खामियां आ जाएं, लेकिन फिर भी हम उसके अंदर, मैं दिखने में गोरा नहीं हूं, ठीक है पाउडर लगा के थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा, एक हमारा था क्लासमेट, वो इतना पाउडर लगाकर आता था और उसको लगता था कि वो पाउडर की आड़ में उसका जो भी वो कॉम्प्लेक्शन है, डार्क कॉम्प्लेक्शन, वो छिप रहा है। तो हम लोग बोलते थे कि वो ऐसा दिखता है जैसे काले जामुन के ऊपर नमक लगाया है। तो चाहे हमारा स्किन का कॉम्प्लेक्शन कैसा भी हो, फिर भी कुछ साल बाद फिर हम उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं हमारे शरीर का, हाउ वी टॉलरेट अवर ओन बॉडी, इवन इफ इट इज फुल ऑफ डिजीजेस, इवन इफ इट इज फुल ऑफ यू नो डिस्क्रिपेंसीज, डेफिशिएंसीज, वी टॉलरेट दिस बॉडी, वी समहाउ फाइंड सम गुड, सो व्हाई नॉट वी टॉलरेट अदर वैष्णवस, even if they are diseased, just like we tolerate our diseased body, why not? Another very interesting quote to begin with, don't try to defeat people, rather try to win their hearts. Ab dekho dono mein keval shabdon ka pher hai. If you are defeating someone, which means you are winning over them. But dono statements ka jo effect hai hamare consciousness mein wo alag hai. Ab dekhiye Bhagwan Krishna wo kisko parast nahi kar sakte. Parantu phir bhi Bhagwan bhautik sansar mein jab aate hain to humko parast karne ke liye nahi aate. चाहे भगवान अपने अवतारों के रूप में आए, चाहे भगवान अपने धाम के रूप में आए, ग्रंथों के रूप में आए, अर्च विग्रह के रूप में आए, अपने नाम के रूप में किसी भी रूप में भगवान आए, भगवान हमको परास्त करने के लिए नहीं आते. ही नेवर कम्स टू डिफीट अस, ही ओनली कम्स टू विन आवर हार्ट्स. दैट्स द ओनली पर्पस ऑफ कृष्णा कमिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, टू विन आवर हार्ट्स बैक विच ही हैज लॉस्ट. द वन थिंग विच कृष्णा हैज लॉस्ट, ही हैज लॉस्ट आवर हार्ट. And he comes to win our hearts. जैसे श्रील प्रभुपाद, हम इसकी चर्चा कर रहे थे कि हमारे जो क्रांतिवीर थे महात्मा गांधी, उन्होंने अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया, परास्त कर बाहर निकाल दिया. प्रभुपाद गए उन्हीं अंग्रेजों के बीच में, और उनको प्रभुपाद ने परास्त कैसे किया? By winning their hearts. So yes, our freedom fighters, they fought and they defeated the Britishers. Prabhupada won their hearts. Kali main charcha kar raha tha, Prabhupada ke ek shishya, wo keh rahe the, hum log aisi umr mein the, jab Prabhupada se hum mile. Hamari umr kya thi? 19-20 saal. Ye hamari umr thi. और प्रभुपाद की उम्र 70 वर्ष. तो हम ऐसी उम्र में थे कि हम तो 30 साल के ऊपर के किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास ही नहीं करते थे, और प्रभुपाद उसके डबल, 70 इयर्स, डबल से भी ज्यादा. तो क्यों प्रभुपाद के ऊपर न केवल हमने विश्वास किया बल्कि हम प्रभुपाद को शरणागत हुए? क्यों? क्योंकि हमने देखा ये व्यक्ति, ये इंसान जिसकी भाषा हमें समझ में नहीं आ रही, जो पढ़ा लिखा नहीं है हमारी तरह, जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं है, परंतु ये हमारे अमेरिका देश में आया है निस्वार्थ भाव से, हमें कुछ देने लेने नहीं. जब हमने ये देखा स्वामी जी के अंदर, तब हमें लगा कि हम, हमारा सर्वस्व भी यदि इस व्यक्ति को दे दे तो ये एक्सप्लॉइट नहीं करेगा हमें. और उन्होंने ये वर्ड्स यूज किए, ही सेड वी सरेंडर्ड टू स्वामी जी, वी सरेंडर्ड टू श्रील प्रभुपाद बिकॉज वी हैड फुल कन्विक्शन दैट दिस पर्सन विल नॉट एक्सप्लॉइट अवर सरेंडर. That is the quality of a leader, one who never exploits the surrender of his followers. तो देखिए, भगवान कृष्ण, उनको क्या लगेगा हमको परास्त करने में? परंतु देखिए, भगवान इतना, इतनी मेहनत, अथक प्रयास भगवान करते हैं, एक ही केवल उनका उद्देश्य है, टू विन आवर हार्ट्स. एंड ही इज टीचिंग दैट इट इज वेरी इजी टू डिफीट पीपल. अगर आप सही में बहादुर हो तो सही बहादुरी परास्त करने में नहीं है, उसके हृदय को जीतने में. इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे, टू किल अ पाकिस्तानी इज नॉट अ बिग डील, बट टू मेक अ पाकिस्तानी एन इंडियन, दैट इज अ चैलेंज. तो वो प्रभुपाद, भगवान कृष्ण, ये सब, तो ये सब हमको उनसे सीखने को मिलता है. तो आज का श्लोक अब हम लेंगे. बहुत ही, मैं अलग अलग ये गोवर्धन लीला के अध्यायों को जो देख रहा था, उसमें से जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसका उपयुक्त ये बहुत मुझे श्लोक छू गया, जहां पर भगवान श्री कृष्ण अब गोवर्धन को उठाए हैं. 25वां अध्याय, दशम स्कंद, 17वां श्लोक. नहीं सद्भाव युक्तानाम सुराणाम ईश विस्मय मत असताम मान भंग प्रशमायोपकल्पते नहि सद्भावयुक्तानां सुराणां ईश विस्मय मत असतां मानभङ्गः प्रशमायोपकल्पते नहि सद्भावयुक्तानां सुराणाम ईश विस्मयः मत सताम मानभंग प्रशमायोपकल्पते। जी ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारविंद से कहा है, तो ये श्री भगवान उवाच है। ये तो यहाँ इस श्लोक में मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद का जो मतलब जो अपने इंग्लिश भागवतम का उनके अनुयायियों का डायरेक्ट जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में वो ज़्यादा पावरफुल लगता है, तो हम उसको देखते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। न नॉट ही सर्टनली सद्भाव विद द मोड ऑफ गुडनेस युक्तानाम हु आर एंडाउड सुराणाम ऑफ द डेमिगॉड्स ईश एज कंट्रोलिंग लॉर्ड्स विस्मय फॉल्स आइडेंटिफिकेशन मत्त बाय मी असताम of the impure mana of the false prestige bhanga the eradication prashamaya for relieving them upakalpate is intended। Translation and purport by disciples of Srila Prabhupada। Since the demigods are endowed with the mode of goodness, the false pride of considering oneself the Lord should certainly not affect them. When I break the false prestige of those bereft of goodness, my purpose is to bring them relief. Very powerful purport is written over here. Kindly read attentively. The demigods are supposed to be sadbhava yukta, endowed with spiritual existence. सिंस दे आर डेप्यूटेड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. इन द भगवद गीता 4.24 इट इज स्टेटेड, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवेर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना. दैट विच इज ड्यूली ऑफर्ड टू द लॉर्ड बिकम्स स्पिरिचुअलाइज्ड. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हाउ दे हैव कनेक्टेड दिस वर्स. The demigods engage in devotional service to the Lord by managing various departments of cosmic administration. Therefore, as demigods or as servants of the Lord, their existence is pure sadbhava. When the demigods fail to live up to the high position given them by the Lord and deviate from proper behavior, they are not acting as demigods, but rather as conditioned souls. Mana or false prestige is certainly an anxiety ridden burden for the conditioned soul. A falsely proud person is not truly peaceful or satisfied because his understanding of himself is false and inflated. When a servant of the Lord becomes asat or irreligious, the Lord saves him from impiety by breaking the false prestige that has led him to be offensive or sinful. As stated by the Lord himself, Yasyaham anugrahami harishye tadhanam shanai. Srimad Bhagavatam 10.88.8. I give my blessings to a person by taking away his so-called opulence. Of course, the advanced stage of devotional service to the Lord as described by Rupa Goswami is Yukta Vairagya, utilizing the opulence of this world to execute the Lord's mission. Obviously, the things of this world can be used wonderfully to spread the glories of Lord and to create a godly society, and a more advanced devotee will not be seduced by material paraphernalia, but will dutifully and honestly engage it solely for the pleasure of the Lord. In this particular case, Lord Indra forgot that he was a humble servant of God, and Lord Krishna therefore arranged to bring this bewildered demigod to his senses. Govardhanadhari Bhagwan Sri Krishna ki Jai. तो यहां असताम भगवान कह रहे मत असताम मान भंग. यहां पर जानबूझ के मैंने उसका टाइपिंग असताम किया है, नहीं तो इंग्लिश में वो मत तो सताम करके रहे, परंतु मैं जानबूझ के उसको असताम ताकि हम ठीक से देखें. असताम का अर्थ है इम्प्योर, और वो इम्प्योरिटी या वो प्रदूषण क्या है, भगवान कह रहे हैं कि जब मैं देखता हूं कि मेरे भक्त कौन से सद्भाव युक्त, जिनको सद्भावना से युक्त होना चाहिए, भगवान कह रहे हैं जब वो नहीं होते, बहुत इजी है समझना ये वर्स, नहीं सद्भाव युक्ताना, जब हम सद्भाव से युक्त नहीं होते और उसके बदले असताम हमारे अंदर प्रदूषण भगवान देखते हैं, और वो प्रदूषण किस चीज का, मान अभिमान का. तो भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं मत्तह, मत्तह का अर्थ है मैं स्वयं मेरे ऐसे सद्भाव युक्त भक्तों का मान भंग करता हूं. प्रशमोपाय कल्पते, यहां पर ये जो वर्ड है प्रशमोषाय, प्रशम उपकल्प उपकल्पते, तो इसका अर्थ है कि उसको मैं रोग मुक्त करता हूं. भगवान के हमारे आचार्य टीका में लिखते हैं रोग मुक्त उसको मैं करता हूं. तो देखिए इधर पर्पोर्ट में लिखा है कि देवराज इंद्र के लिए भगवान ने ये सब कुछ अरेंज किया, पूरी गोवर्धन लीला। जैसे जो पहला कारण हमने लिया है कि फर्स्ट रीजन इज अरेंज्ड फॉर दिस, तो क्या देवराज इंद्र, अगर हम थोड़ा उनका इतिहास और देखें कि उन्होंने किन किन को टारगेट बनाया था और आगे भी बनाएंगे, और कैसे भगवान हर समय अपने देवताओं को, उन भक्तों को सही राह पर लाने के लिए कार्यरत रहते हैं। तो सबसे पहला टारगेट, अगर हम प्रसिद्ध टारगेट जो उन्होंने बनाया, विश्वामित्र मुनि, और इसमें यही उनकी मेंटालिटी रही, कंपेयरिंग एंड कॉम्पीट। उनको लग रहा है कि विश्वामित्र मुनि तपस्या कर रहे हैं मेरे पद को हासिल करने के लिए। तो जब व्यक्ति के अंदर अभिमान आता है तो उसको यही लगता है कि ये जो भी कुछ अच्छा कर रहा है ये मुझे साइड ट्रैक करने के लिए कर रहा है। तो कई बार भक्ति में भी हमको ये लगता है कि इतनी अच्छी भक्ति कर रहा है मुझे साइड ट्रैक करने के लिए कर रहा है। दूसरा उदाहरण, नर नारायण ऋषि भगवान स्वयं, अब वो तपस्या कर रहे हैं और देवराज इंद्र भेजते हैं कामदेव को। अब देखो कि भगवान देवराज इंद्र का पद क्यों लेना चाहेंगे। ये तो वो हो गया कि कोई चीफ जस्टिस है और वो हवलदार का पद लेना चाहेगा। पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ, और 99 अश्वमेध यज्ञ उन्होंने कर लिए थे, और अब तक देवराज इंद्र का रिकॉर्ड था कि केवल उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो उनको लगा कि ये सेंचुरी केवल मैं ही मार सकता हूं, पृथु महाराज नहीं। तो वो क्या क्या जतन उन्होंने नहीं किए, भेष बदल कर आना, घोड़े को चुरा कर ले जाना, और उनके यज्ञ में बाधा डालना, लास्ट में भगवान को आना पड़ा और भगवान पृथु महाराज को कहे कि भाई क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। दोनों भगवान के भक्त हैं, पृथु महाराज वो भी नहीं छोड़ रहे थे, वो बोले कि ये इंद्र घोड़ा चुरा कर ले जा रहा है मेरा, मैं भी छोड़ूंगा नहीं। तो भगवान आए और भगवान फिर देखे कि दोनों में मैच्योर कौन है। कई बार काउंसलिंग ऐसे ही करना पड़ता है कि दोनों में मैच्योर कौन है। तो उन्होंने देखा पृथु महाराज भाई आप मैच्योर हो तो आप थोड़ा पीछे हट जाओ। तो जैसे होता है ना, जब दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है कि नहीं मेरा आगे, नहीं मेरा आगे, मेरा आगे, मेरा आगे, तो फिर शांति से एक व्यक्ति को बोल देना चाहिए, ठीक है भाई आपका गधा आगे मेरा घोड़ा पीछे। ये हिंदी का मुहावरा है, हिंदी का मुहावरा है कि जब दोनों के बीच में ये वाद विवाद चल रहा है कि किसका वाहन आगे होना चाहिए, तो एक बोल देता है ठीक है आपका गधा आगे मेरा घोड़ा पीछे। तो उसका अर्थ क्या हुआ, रघुनाथ दास गोस्वामी ने बताया कि आपका जो अभिमान है उस गधे के मूत्र के समान है, तो उसको आगे कर लो, ठीक है। तो भगवान ने पृथु महाराज को कहा कि भाई क्या हासिल होने वाला है, 100 अश्वमेध यज्ञ कर लोगे तो क्या है ना, इतना बड़ा तुम प्राप्त कर लोगे, रहने दो ये इतना एक ना बाल हट कर कर, नहीं नहीं मेरा होना चाहिए खाली, मेरा रिकॉर्ड होना चाहिए। वो जैसे छोटे बच्चे नहीं लड़ते, नहीं मेरी चॉकलेट है, मेरी चॉकलेट है, मेरी चॉकलेट है, वैसे ही देवराज नहीं मेरा पद 100 अश्वमेध यज्ञ मेरी चॉकलेट है, ठीक है भाई ले ले तू खा ले। तो ये पृथु महाराज के साथ उनको नहीं छोड़ा उन्होंने। वृत्रासुर कि यहां पर वृत्रासुर, उनको शाप मिला हुआ था कि वो मरने वाले हैं और इंद्र के हाथ ही मरने वाले, लेकिन फिर भी इंद्र डरे हुए थे कि नहीं अगर ये बच गया तो, ये तो ज्यादा शक्तिशाली दिख रहा, अगर बच गया तो पूरी वो एक अपने आप में बहुत रोमांचक कथा है देवराज इंद्र और वृत्रासुर की। बलि महाराज जब इंद्र ने अपने गुरु का अपराध कर दिया, उसके बाद में बलि महाराज शक्तिशाली हुए, तब फिर से देवराज इंद्र टेंशन में, उनका सब कुछ लूट गया, तो वापस से उन्होंने भगवान को याचना कर कर फिर वो देवासुर संग्राम जो हुआ और उसके बाद में बलि महाराज के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए क्या कुछ नहीं इन्होंने किया। और ये जो अंतिम उदाहरण है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दशम स्कंद में ये गोवर्धन लीला हुई, देवराज इंद्र उनको भगवान ने सही राह पर ले आया, सब ब्रॉट हिम टू हिज सेंसेस जो लिखा है परपोर्ट में। और मेरे ख्याल से ये अध्याय है 59वां अध्याय, 59th चैप्टर, जहां पर देवराज इंद्र भगवान के पास जाते हैं कि नरकासुर का वध करो। अब ये नरकासुर कौन था? ये भगवान का ही पुत्र था, पृथ्वी से पैदा हुआ। तो इंद्र, क्योंकि अदिति, अदिति ये नरकासुर ने कुछ आतंक फैला रखा था, इंद्र की जो कुंडल है, अदिति की जो कुंडल है वो सब चुरा लिया था इसने, तो वो लौटाने के लिए फिर इंद्र गए भगवान के पास कि इसका वध आप करो, तो भगवान ने वध कर दिया। वो पूरी एक कथा है, वो मूरा और नरकासुर ये सब का वध भगवान ने कर दिया। उसके पश्चात सत्यभामा के साथ थे भगवान, तो भगवान वो कान के कुंडल लौटाने के लिए स्वर्ग गए। अब देखो इंद्र का काम कर रहे हैं भगवान, तो कुंडल लौटाने के लिए गए और वहां पर सत्यभामा ने पारिजात वृक्ष देखा। अब देखो आप, हम यहां पर भी देखते हैं पारिजात के जो फूल हैं कितने सुंदर और उनके अंदर वो महकदार होते हैं। तो सत्यभामा ने देखा तो सत्यभामा ने तुरंत भगवान से कहा कि मुझे तो ये पारिजात फूल नहीं पूरा वृक्ष चाहिए। तब देखिए भगवान है वो, एक पारिजात वृक्ष क्या है, पूरी सृष्टि उनकी है। तो भगवान ने वो पूरा वृक्ष उखाड़ लिया और भगवान ले जा रहे थे इंद्र। अभी अभी इंद्र के लिए भगवान इतना लड़मर कर आए हैं और इंद्र, नहीं ये क्या मेरा वृक्ष है पारिजात, इसको कैसे लेके जा रहा हूं। फिर भगवान के साथ युद्ध चालू कर दिया इंद्र ने। सोचिए कि मतलब अब ये उस प्रकार से हो गया कि जैसे मान लो हमारे राधा मदन गोपाल जी है, तो राधा रानी वो मदन गोपाल जी से कहती है कि मुझे डीटी किचन से कुछ चाहिए। अब वो किचन किसका है? उन्हीं का है। वो पूरा किचन बनाया किसके लिए? उन्हीं के लिए बनाया। तो राधा रानी बोलती हैं कि वो ऑफरिंग में बहुत टाइम लगा रहे हैं, मुझे अभी खाना है, खीर अभी खाना है, जाओ लेकर आओ। तो भगवान ऑल्टर से उतरकर डीटी किचन में जा रहे लेने के लिए, और कोई हमारे पुजारी रोक दिया, भगवान क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं, खाली ब्राह्मण इनिशिएटेड अलाउड है। तो कितना बड़ा मजाक है ये कि भगवान का ही किचन है, भगवान का सब कुछ है और भगवान अपना ही भोग लेने के लिए जा रहे हैं और उसको कोई अगर रोक रहा है, भगवान के उस क्रिया को कोई रोक रहा है। तो ये उसी के समान था। अरे इंद्र कौन है, तुम्हारा अमरावती कौन है, ये पारिजात और सब कुछ मेरा ही है, अपना ही वृक्ष भगवान लेकर जा रहे, और कैसे लेके, मेरा है ये। तो ये इसमें से समझ में आता है कि अभिमान व्यक्ति को कितना अंधा बना सकता है। इसको कहते हैं नीति शास्त्र के अनुसार मदांध। अलग अलग प्रकार का अंधापन होता है। कामांध, काम के वजह से अंधा कोई हो जाता है। लोभांध, लोभ के वजह से। वैसे मदांध कि मद के वजह से, अभिमान के वजह से अंधा हो जाना। अच्छा, अब यहां पर यदि हम गौर करें तो देवराज इंद्र का जो अभिमान वो इंडिविजुअल लेवल और कॉस्मिक लेवल दोनों पर था। तो इंडिविजुअल लेवल पर उनका अभिमान किस प्रकार से समझ में आया? डिजायर फॉर अटेंशन. तो कैसे हुआ कि भगवान ने अटेंशन पूरा डाइवर्ट कर दिया गोवर्धन के ऊपर, है ना? सारी सामग्री, सारे वीडियो कैमरा गोवर्धन के ऊपर. तो जब देवराज इंद्र के ऊपर अटेंशन नहीं दिया गया तो वो कुपित हुए. और कॉस्मिक लेवल पर अगर हम देखें तो कॉस्मिक लेवल पर क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट ओवर रिसोर्स एलोकेशन. समझाएंगे आपको, घबराइए मत. कि जो सारी सामग्रियां देवराज इंद्र के लिए इकट्ठा इन्होंने की थी, भगवान ने कहा कि, तो नंद महाराज ने कहा था, नंद महाराज ने कृष्ण को कहा कि इंद्र यज्ञ हम कर लेते हैं, गोवर्धन की पूजा उसके बाद कर लेंगे, दोनों कर लेते हैं. तो उन्होंने भगवान को कहा कि हम दोनों कर लेंगे, अभी ये सारी सामग्री हमने इंद्र के लिए निकाल के रखी है, तो पहले उनकी पूजा कर लेते हैं और उसके बाद में फिर हम गोवर्धन की पूजा भी कर लेंगे. तो भगवान ने कहा नहीं, ये सारे आइटम्स, यही आइटम्स गोवर्धन को ऑफर करो. तो हुआ क्या कि मेरे सामने बनाई गई प्लेट मेरे सामने से उठाकर किसी और को दे दी. ये उस प्रकार से कि मानो आप भूखे बैठे हैं, आपकी प्लेट किसी ने बनाई आपके सामने और आप महाप्रसादे बोल रहे हो आंख बंद कर कर और उठा के ले गया कोई प्लेट. इसलिए बहुत से लोग महाप्रसादे बोलते नहीं है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, या बोलते भी तो आंख खोल कर बोलते हैं. तो उस प्रकार से था. तो भगवान ने जानबूझकर चिढ़ाने के लिए सारी इंद्र पूजा की सामग्री गोवर्धन की तरह डाइवर्ट कर दी. तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये कॉस्मिक लेवल पर उनको अहंकार का ठेस पहुंचा. तो कई बार हमारे भी भक्ति में ऐसे ही होता है, हमको कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, कोई मेरे पता देख नहीं रहा है, कोई मुझे फोन कॉल नहीं करता, मिस्ड कॉल भी नहीं देता, एसएमएस भी नहीं करता, कोई मुझे प्रभु भी नहीं बुला रहा है, कोई बुलाता भी नहीं, कुछ नहीं, अटेंशन नहीं हो रहा है. और फिर मेरा डिपार्टमेंट उसको दे दिया. ये है कॉस्मिक लेवल के ऊपर प्रॉब्लम. मतलब कॉस्मिक लेवल मतलब इंस्टीट्यूशनल लेवल. हम लोग अगर इसको हमारे सेटअप में ट्रांसलेट करें तो एक है इंडिविजुअल लेवल पर हमको अटेंशन चाहिए, अटेंशन. जैसे एक प्रभुपाद के बहुत सुंदर पास टाइम है, प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे. तो एक व्यक्ति प्रभुपाद के डिसाइपल, तो वो बहुत अटेंशन चाहते थे, कि अटेंशन पाना चाहते थे प्रभुपाद का और बाकियों का. तो प्रभुपाद ने देखा कि भागवतम की एक कॉपी फर्श पर रखी हुई थी. तो प्रभुपाद तुरंत बोले, व्हाट इज दैट, इट्स एन ऑफेंस, भागवतम को ऐसे फर्श पर रखा है. तो तुरंत उन्होंने उठा. तो फिर ये भक्त, इन्होंने क्या किया, ये जो भागवतम का कवर हम लोग लगाते ना, तो उन्होंने ये कवर बनाया ऐसे भागवतम का, बहुत सुंदर कवर अपने हाथों से बनाया. और फिर नेक्स्ट मीटिंग जब हुई, प्रभुपाद रोज बैठते थे, तो नेक्स्ट मीटिंग में वो प्रभुपाद को वो भागवतम का कवर ऐसे गिफ्ट के रूप में ऑफर किया. प्रभुपाद, आई हैव मेड अ स्पेशल गिफ्ट फॉर यू ऑफरिंग. तो प्रभुपाद को ऑफर किया, तो सबके सामने वो ऐसे कर रहे थे कि सब लोग देखेंगे कितना यूनिक, इनोवेटिव, क्रिएटिव ऑफरिंग प्रभुपाद को दे रहे हैं, प्रभुपाद कितना खुश होंगे, क्योंकि कल ही वो हिस्सा हुआ है. तो प्रभुपाद ने देखा, व्हाट इज दिस, प्रभुपाद भागवतम कवर फॉर यू. प्रभुपाद बोलते हैं, आई नेवर कीप माय भागवतम ऑन द फ्लोर, दिस इज फॉर यू, यू कीप इट. तो तुरंत जो उनका वो खुद बता रहे थे कि आई वॉज इन माई हार्ट वॉन्टिंग टू ग्रैब एवरीवन्स अटेंशन, और फिर उसके दूसरे दिन वो प्रभुपाद के पास अकेले गए और प्रभुपाद को और उन्होंने प्रभुपाद को एक आम ऑफर किया, मैंगो। अब वो अकेले थे प्रभुपाद के कमरे में, तो प्रभुपाद ने देख लिया, प्रभुपाद डिटेक्टेड कि अभी ये जो मेरे को मैंगो ऑफर कर रहा है कि इसके अंदर अभी वो अटेंशन सीकिंग का डिजायर नहीं है, क्योंकि पिछले दिन सबके सामने वो जो ऑफर किया था ही वॉज डिजायरिंग अटेंशन। तो प्रभुपाद ने जैसे ही वो मैंगो देखा, प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद बोले तुरंत, दिस इज द किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स। और फिर प्रभुपाद बोले, जस्ट सी हाउ वंडरफुल कृष्णा इज, दैट कृष्णा हैज पुट जूस फ्रेग्रेंस एंड टेस्ट एंड ऑल्सो पैकेज्ड इट विथ अ स्किन। तो प्रभुपाद ने तुरंत डाइवर्ट कर दिया कि तुमने जो आम लाया है ये तुमने पैदा नहीं किया है, वापस से घमंडी मत बनो। तुरंत प्रभुपाद ने, जैसे आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, असताम मान भंग, सो दिस डिसाइपल वॉज ऑनेस्टली ही सेड आई वॉज डिजायरिंग अटेंशन फ्रॉम प्रभुपाद एंड प्रभुपाद कुड डिटेक्ट दैट। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, अब देखो नरोत्तम दास ठाकुर जो अपने गुरु महाराज का मलमूत्र साफ करते थे, वो तो वो इस प्रकार से ऐसे समय पर साफ करते थे कि किसी को पता ना लगे, दिखा दिखा के नहीं करते थे, अरे अभी जब सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो मैं दिखा दिखा के करूंगा। कई बार होता है ना, हम लोग कुछ सेवा ऐसे थोड़ा दिखा के करना चाहते कि सब लोग देख रहे हैं कि नहीं, फिर मैं बाल्टी हाथ में लेता हूं। या फिर आजकल आप देखो कि कई ऐसे जो हिंदू मंदिर होते हैं उसके अंदर लोग डोनेशंस देते हैं ना, तो डोनर्स होते हैं वो लोग, अपना अपना नाम लिखाना चाहते हैं, मतलब एक टाइल होगी खाली, एक टाइल के ऊपर फिर इतना पूरा वो टाइल में भरा हुआ है पूरे खानदान का नाम। या मैंने बहुत बार देखे हैं मंदिरों में पंखे डोनेट करते हो, तो जो पंखे हैं उसके एक एक ब्लेड पर पूरे खानदान का नाम लिखा रहता है कि चंदुमल फक्कड़चंद ने ये डोनेट किया पंखा, और पंखे में ये ब्लेड उनकी तरफ से था, दूसरा ब्लेड उनके पोते की तरफ से, तीसरा ब्लेड उनके पड़पोते की तरफ से, अब हवा लो इसकी। तो ये डिजायर फॉर अटेंशन, दिस इज ऑन अ इंडिविजुअल लेवल। अब इसमें अगर हम देखें तो भगवान कृष्ण ने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की, भगवान ने भी कंपैरिजन और कंपटीशन को यूज किया मान भंग करने के लिए, जो आज के श्लोक में है। तो कंपैरिजन के तौर पर भगवान ने इंद्र यज्ञ के बदले गोवर्धन का यज्ञ करवाया। ठीक है, अगर इंद्र तुम्हारी मेंटालिटी कंपैरिजन की है, सो कंपेयर योरसेल्फ विद गोवर्धन। इफ यू थिंक दैट यू आर सर्विंग मी, देन जस्ट ट्राई टू कंपेयर योरसेल्फ विद गोवर्धन एंड यू कम टू नो हाउ मच गोवर्धन इज सर्विंग मी। इसके भी कनेक्शन में एक प्रभुपाद की पास टाइम है सुंदर। हवाई में प्रभुपाद थे मॉर्निंग वॉक, और वहां पर एक प्रभुपाद के डिसाइपल, तो उनको पता था कि प्रभुपाद जब भी मॉर्निंग वॉक के लिए किसी नए जगह पर निकलते हैं तो प्रभुपाद बहुत से क्वेश्चंस पूछते हैं कि हाँ ये बताओ, इसकी हिस्ट्री बताओ, ये ऐसा क्यों ऐसा क्यों उस जगह के बारे में। तो इन्होंने क्या किया, प्रभुपाद आने से पहले पूरा होमवर्क कर लिया कि मैं मॉर्निंग वॉक में जाऊंगा और प्रभुपाद कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं आंसर दूंगा। तो उन्होंने पूरा रिसर्च कर लिया हवाई के बारे में सब कुछ, कि हवाई का हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ, और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद, पहली दफा हवाई तो मॉर्निंग वॉक में, फिर वो पीछे पीछे बहुत से और भी शिष्य थे। तो प्रभुपाद ने कुछ नहीं पूछा, अब वो वेट कर रहा है, प्रभुपाद कुछ पूछ नहीं रहे। और फिर अचानक प्रभुपाद ने एक कोने में एक ऐसा साइन बोर्ड देखा, एक प्लाक देखा, उसके ऊपर हॉर्टिकल्चर लिखा था। तो प्रभुपाद रुके, पीछे मुड़े और प्रभुपाद पूछे, व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? अब इन्होंने बाकी सब कुछ छानबीन कर ली थी, वो नहीं मालूम था उनको हॉर्टिकल्चर क्या होता है। फिर भी उन्होंने बोला, आई थिंक प्रभुपाद, जैसे उन्होंने आई थिंक बोला, प्रभुपाद बोले स्टॉप इट, वेन एवर एनी वन सेज आई थिंक इट मीन्स ही डजंट नो। तो उसी समय एक और दूसरे प्रभुपाद के डिसाइपल वो बोले, प्रभुपाद हॉर्टिकल्चर मीन्स इट इज आर्ट ऑफ गार्डनिंग एंड गार्डन मैनेजमेंट। तो प्रभुपाद बोले यस, दिस इज कॉल्ड कंफर्म्ड नॉलेज। और ये भक्त, दूसरे भक्त जिन्होंने आंसर नहीं दे पाए, वो उन्होंने कहा अपनी मेमोरीज में, वो कहते हैं दैट प्रभुपाद कुड डिटेक्ट दैट आई वॉज नॉट इन गुड टर्म्स विद दैट अदर डिवोटी। सो प्रभुपाद हु इज ऑल्सो चैत्य गुरु परमात्मा, ही कुड डिटेक्ट इन दोनों का जम नहीं रहा है, 36 का आंकड़ा चल रहा है इन दोनों का। तो इसलिए प्रभुपाद ने उनको फोकस कर इनका मान भंग किया। तो वैसे यहां पर भगवान जानते थे कि देवराज इंद्र का यदि मान भंग करना है तो कोई ऐसे भक्त को मुझे सामने प्रस्तुत करना होगा जिसकी कभी अपेक्षा इंद्र नहीं करेंगे। एक पर्वत, क्या मेरी तुलना पर्वत से कर रहे? ही इज कंपेयरिंग मी विथ अ यू नो डेड माउंटेन, दैट वॉज हिज विजन। और कंपटीशन, अब देखो कंपटीशन में भगवान ने कैसे ठीक किया कि जब देवराज इंद्र ने पूरे वृंदावन को विध्वंस करने के लिए संवर्तक भेजे तो भगवान ने ये नहीं, अब भगवान खुद भी संवर्तक को बोल सकते थे तुम्हारी हिम्मत, भागो यहां से, ऐसे बोल के वो संवर्तक चले जाते थे। परंतु भगवान ने गोवर्धन को क्यों उठाया? ये दिखाने के लिए कि तुम जिससे कॉम्पीट करने के लिए ये संवर्तक भेजे हो उसकी शक्ति देखो कि तुम्हारे संवर्तक बादल, तुम्हारा तूफान इस गोवर्धन पर्वत के एक वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिला पाएगा। और वो हुआ कि ये संवर्तक बादल जो कि प्रलय के समय इंद्र इस्तेमाल किया करते थे और ऐसा आंधी तूफान वहां पर भेजा इस बाढ़ के साथ, संवर्तक बादलों के साथ, उस वर्षा के साथ, वर्षा वहां पर बूंदों में नहीं खंभों में गिर रही थी, खंभों में। और भगवान ने दिखाया गोवर्धन को उठाकर कि इस गोवर्धन पर्वत के ऊपर के एक ब्रज रज को भी तुम हिला नहीं पाओगे इंद्र, कर लो क्या कर लोगे, यू कांट इवन मूव अ सिंगल ग्रेन ऑफ डस्ट, यू वॉन्ट टू कंपीट विथ गोवर्धन, सी द क्वालिटीज ऑफ गोवर्धन। तो भगवान ने यहां पर अपने आप को सामने कर लड़े नहीं देवराज इंद्र से, गोवर्धन को सामने किया, कॉम्पीट विथ हिम देन कम टू मी, मैं तो बहुत आगे पहुंचा हुआ, तुम मेरे से क्या लड़ोगे। So this was Krishna's technique. Hridayanand Maharaj, वो अपने memories में कह रहे थे कि जुहू के morning walk में प्रभुपाद, एक भारतीय व्यक्ति जो कि कोई इस्कॉन का भक्त नहीं था, वो भी morning walk के लिए आया करता था, Hridayanand Maharaj भी हुआ करते थे। तो ये व्यक्ति जब भी प्रभुपाद कुछ कुछ पॉइंट कहते तो ये संस्कृत का श्लोक बोल देता उसके कनेक्शन में, इतना वो पारंगत था संस्कृत में और वेदों में. इमीडिएटली ही वुड कोट अ संस्कृत श्लोक. तो प्रभुपाद बोले, ओ आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर लर्निंग. तो हृदयानंद महाराज को लगा कि अरे मैं भी फिर कल से, उनको भी संस्कृत के बहुत श्लोक आते थे. तो फिर दूसरे दिन मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद ने ऐसे ही कोई मुद्दा कुछ कहा तो हृदयानंद महाराज ने एक श्लोक बोल दिया और प्रभुपाद देखे, अच्छा सो ही इज ट्राइंग टू कॉम्पीट. प्रभुपाद ने देख लिया, इज ट्राइंग टू कॉम्पीट. तो प्रभुपाद ने कह दिया, सो वॉट, देर आर सो मेनी श्लोकास, सो वॉट, और आगे चलने लग गए. तो यहां पर भगवान और जो बड़े भक्त होते हैं प्रभुपाद जैसे आचार्य, उनके ठीक करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही एडवांस्ड लेवल का टेक्निक्स होते हैं उनके, और हम केवल उसको पहचान जाएं तो हमारा उद्धार निश्चित है. नहीं पहचानेंगे तो फिर नहाते रहेंगे उसके अंदर. जानते हैं आप किसके अंदर. इसलिए ये जो दो मुद्दे जिसकी हम चर्चा किए, कंपैरिजन शुड टर्न इनटू कॉम्प्लीमेंटिंग, कॉम्पिटिशन शुड टर्न इनटू कोऑपरेशन. और राइट अप्रोच क्या है, अगर हमारे अंदर से ये कंपेयरिंग और कॉम्पीटिंग मेंटालिटी नहीं जा रही तो युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल रूप गोस्वामी जो दिए हैं कि हर चीज को हम स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं. सो कंपेयर टू इंप्रूव वन सेल्फ. इफ यू वॉन्ट टू कंपेयर विथ अदर्स, कंपेयर टू इंप्रूव वन सेल्फ एंड कॉम्पीट टू सर्व कृष्णा. ये भी ब्रज का भाव है. दे कंपेयर बट दे कंपेयर टू इंप्रूव वन सेल्फ. जैसे कि तीसरे स्कंद में है कि सभी तुलसी महारानी को सर्वश्रेष्ठ मानती हैं, सब जो वहां के वृक्ष लताएं हैं, कि हाँ हम अपने आप को अगर तुलसी महारानी से कंपेयर करें तो तुलसी महारानी जो हैं वो ऐसी प्रगत है, कृष्ण प्रिया उनका नाम है. सो यस, वी कंपेयर आवरसेल्फ विद प्रहलाद महाराज और एनी एडवांस डिवोटी एंड ट्राई टू इंप्रूव बाय दैट कंपेरिजन. एंड यस, वी शुड कॉम्पीट. प्रभुपाद यूज्ड टू मेक हिज डिसाइपल्स कॉम्पीट विथ ईच अदर टू डिस्ट्रीब्यूट मोर बुक्स टू सर्व कृष्णा इन अ मोर बेटर वे. तो आज के इस हमारे सेशन के अंत में आपको एक वीडियो दिखाएंगे हम, उससे अंत करेंगे. और ये वीडियो है द जॉय ऑफ कोऑपरेशन, बिकॉज फाइनली कलयुग के अंदर यदि हमारे पास कोई शक्ति है तो एक ही शक्ति है और वो है कलौ संगे शक्ति, the power of association. Association means cooperation. घबराइए मत. काफी inspiring ये video है. मुझे पता नहीं ये व्यक्ति कौन है या ये कहाँ का clipping है, कोई किसी movie का है पता नहीं, परंतु मुझे बहुत समय पहले मैं एक सेमिनार प्रिपेयर करते समय इसके संपर्क में आया था इस वीडियो के.
100 meters పరుగు పందెం మొదలు కాబోతుంది. మీరంతా చప్పట్లతో ఆ చిన్నారులను ప్రోత్సహించండి. The next event is 100 meters running race for physically challenged children. Give them a big hand.
सब हम लोग भी ये लूले लंगड़ों की तरह रेस में शुरू किए हैं और हम यही चाहेंगे कि जो भी हमारी खामियां हैं लेकिन हम एक साथ सब भगवत धाम पहुंचे, जैसे इस लोग ने एक साथ वो फिनिशिंग लाइन टच की। तो भक्ति यही है कि भक्ति का अर्थ ये नहीं कि कोई एक विनर है और दूसरा लूजर है। इन डिवोशनल सर्विस एवरी वन इज अ विनर, देर आर नो लूजर्स इफ वन इज सिंसियरली ट्राइंग टू प्लीज कृष्णा। इफ यू आर सिंसियरली ट्राइंग टू प्लीज कृष्णा, नो मैटर हाउ क्रिपल्ड वी आर, नो मैटर हाउ हैंडीकैप वी आर, इफ वी आर सिंसियर देन डेफिनेटली Krishna will arrange that even though others might be crippled in their devotional service, they will come and they will help us. And because of each other's help, we all will one day surely reach the finishing line, which is going back home, back to Godhead. Jai Shila Prabhupada ki, Granth Raj Srimad Bhagavatam ki, Nitai Gaur Premanandi. तो अभी अगले संडे हमारा इसी फर्स्ट रीजन को लेकर हमारा टॉपिक रहेगा, हाउ टू सेलिब्रेट अदर्स सक्सेस। इट इज सो वेरी कॉमन टू सेलिब्रेट अवर ओन सक्सेस, सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम गोवर्धन लीला हाउ टू सेलिब्रेट अदर्स सक्सेस। हरे कृष्णा। यदि किसी का कोई एक प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, क्षमा करना। आपका प्रश्न है?
हरे कृष्णा प्रभु जी,
बोलिए।
व्हाट एवर वी हैव हर्ड अबाउट गॉड इंद्र, whatever problem he used to face, he used to run here and there for the help, either to Shiva, either to Vishnu, either to Brahma. Then what was that thing that justified his kingship? How was he announced a king of gods?
See, we are just taking one pastime, and in that one pastime, just one particular mistake of Indra. As that verse which we took today, in which Krishna is saying, Sadbhava Yuktanam means that they are endowed with many, many good qualities. And amongst millions of good qualities of Indra, this was just one speck of discrepancy, you can say. So Krishna wants that my devotees, whether they are demigods or whether whoever, Krishna wants them to be 100% pure. So this whole pastime, Krishna is trying to remove that one speck. Okay. But then there are other so many pastimes, even the prayers which Indra offers after Govardhan Leela. Krishna, he is very much pleased by that. So yes, definitely, Indra is very, very much qualified. Therefore, he has been given that post. So there are definitely so many pastimes in connection with how Indra has pleased Krishna and on behalf of Krishna managing the affairs of this universe and so many other universes. So because we are focusing on one pastime, and in that one pastime, one particular aspect of Krishna, Indra, therefore it appears to be like Indra is only made up of that. No, it's not like that. It's just one speck.
Actually, thing is like whatever stories we have heard about King Indra since our childhood, and whatever targets you mentioned, everywhere it was like Indra was not that matured that he used to always compete or compare himself with others. And
see, all the stories which appears to be like kind of magnified and given in the scriptures, they are just meant for us. Like, you know, Srimad Bhagavatam in Brahma Loka is 1 billion verses. So in that, all the different elaborate other aspects of Krishna Leela, you know, in connection with Indra and other demigods, are mentioned in that. So it's like, you know, if a teacher wants to correct the students, so the teacher will use those examples of people who might have done something wrong and then tell to the students that you should not do something like that. So Indra is willing to become that example for Krishna to teach us valuable lessons. And therefore, you remember last week I gave the example of what Prabhupada gives the example of daughter-in-law. If the mother-in-law wants to correct the daughter-in-law, mother-in-law uses the daughter. Mother-in-law doesn't use the maidservant, uses the daughter, because the daughter is mature enough to understand and not get carried away. And so is King Indra also. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Ram.